इल्म का मुझको शौक था कर खुदा इल्म नाफे मिले अज पाए उलमा। इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नासिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद जैसी अजीम किताब अता फरमाई और उसकी तशरीह व तौज़ीह के लिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहदीस तैयबा और सीरत तैयबा हमारे सामने रखी। कुरान व हदीस की तालीमात हमारी जिंदगी को उस अंदाज में गुजारने का तरीका बताती हैं जो अंदाज हमें दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे। दुनिया में भी हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे और आखिरत में भी हमारे लिए दायमी नजात का जरिया बने। दीन क्या है, शरीयत क्या है? शरीयत का मतलब होता है रास्ता, कुशादा रास्ता, कुशादा शाहरा, जिसके ऊपर चलकर आदमी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। शरीयत दीन पर चलने वाले रास्ते का नाम है। अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं, ये अहकाम हिदायत हैं, नसीहत हैं, फौज हैं, फलाह हैं, नजात हैं, सहूलत हैं, आसानी हैं, कामयाबी हैं। अगर कुरान और हदीस के बताए हुए अहकाम पे अमल करें तो हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं कि जो हमारे लिए दुनिया या आखिरत में नुकसानदेह साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें फरमाया गीबत ना करो, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। अगर हम गीबत नहीं करते तो हमारा मुआशरा पुरसकून होता है। फरमाया किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करो, किसी पे बोहतान ना लगाओ। बोहतान नहीं लगाएंगे तो बहुत से जो फसादात हैं वो खड़े नहीं होंगे। फरमाया हलाल कमाओ, हराम से बचो, सूद से बचो, एक दूसरे का माल बातिल और नाजायज तरीके से खाने से बचो। अगर इस पर अमल किया जाए तो अब खुद गौर कर ले कि जिंदगी कितनी पुरसकून हो जाती है। फरमाया कि बीवियों के शोहरों पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे शोहरों के बीवियों पर हैं, हाँ शोहरों को एक दर्जा उन पर फजीलत हासिल है। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों के दूसरे पे हुकूक हैं। अगर इस्लाम के इस हुक्म पे अमल हो तो आप यकीन कीजिए कि घराने खुशहाल हो जाए, खुशियों का गहवारा बन जाए। इसी तरीके से शर्म व हया और पर्दे के हवाले से जो दीन ने अहकाम बताए हैं अगर उन पर अमल किया जाए तो बहुत सी मुआशरती और अखलाकी बुराइयों से बचत हो सकती है। मर्दों से फरमाया तुम अपनी निगाहें नीची रखो, औरतों से फरमाया तुम अपनी निगाहें कुछ नीची रखो, औरतों से फरमाया कि तुम पर्दा करो, तुम अपने बदन को ढांप के रखो। एक ओढ़नी जो है वो यूं सर से ली जाए कि जो बदन को ढांपे सीने को ढांपे। मर्द औरत से फरमाया कि तन्हाई और खलवत के अंदर इकट्ठे ना हो कि तीसरा शैतान होगा। औरत से फरमाया कि अगर उसने सफ़र करना है तो वो अपने साथ अपने महरम या अपने शौहर को रखे। फरमाया कि किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन का सफ़र यानी 92 किलोमीटर का सफ़र बगैर शौहर या महरम के करे। अब अगर इन अहकाम पे अमल हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। हमारी इज्जत और आबरू को कितना तहफ्फुज़ मिल सकता है। फिर इसके बावजूद चूंकि मुआशरे के अंदर बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिन पर वाज़ो नसीहत असरअंदाज नहीं होती, जिन्हें समझाना किफायत नहीं करता, उनके लिए ये है कि अगर वो जराइम का इर्तिकाब करते हैं तो दीन इस्लाम ने सजाओं का एक पूरा निज़ाम अता फरमाया, चोरी करें तो ये सजा दो और ऐसी इबरतनाक सजा दो कि पूरी जिंदगी दोबारा चोरी का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसका हाथ ही बता रहा होगा कि ये चोर है, इसने चोरी की थी, लोग उससे बचेंगे और वो खुद मोहतात रहेगा। अगर कोई फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब होता है, अगर कोई किसी बड़े जुर्म का मुर्तकिब होता है तो शरीयत ने जुर्म के एतबार से उसकी सजा मुकर्रर की। कहीं किसास का हुक्म है, खा वो जान के बदले जान हो या उज्व के बदले उज्व हो, या वो हिराबा और फसाद फिल अर्द की सूरत हो, या वो बदकारी और चोरी की सूरत हो, या वो बोहतान और इल्जाम तराशी की सूरत हो, या वो शराब नोशी हो, शरीयत ने उनकी वो सजाएं मुकर्रर की हैं कि अगर उन पर अमल दरामद हो जाए तो आप यकीन कीजिए ये बिगड़े तिगड़े सारे सुधर जाएं। ये इसलिए नहीं सुधरते कि जब जुर्म के बावजूद उनको पता है कि छूट ही जाना है, जब जुर्म के बावजूद पता है कि अब तो हमें बिठा के खाना ही खिलाना है, अब तो हमारी मौज मस्ती होगी, अब तो हमने इंजॉयमेंट ही करना है, तो कौन जुर्म से रुकता है? तो आप यकीन कीजिए जो फला है वो दीन में है, वो इस्लाम में है, वो खुदा के अहकाम में है, वो अल्लाह के फरमान में है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। इससे हटकर दुनिया जहान के जितने मर्जी उसूल कायदे कानून और बहुत से जो है वो चीज़ें ले आए, फला नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि खुदा खालिक कायनात है और खुदा फरमाता है अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया और वही बारीक बीन खबरदार है। खुदा ने पैदा किया, उसे पता है, उसे इल्म है कि उसकी मखलूक में किसमें क्या कमी है, कोताही है, खामी है, बुराई है, ऐब है, नक्स है और इन्होंने सुधरना कैसे है। तो उस खालिक कायनात और आलिमुल गैबी व शहादा ने अपने इल्म से जो अहकाम कुरान और अपने नबी के जरिए अता फरमाए हैं वो अबदी हैं, वो दायमी हैं, वो हकीकी नजात और फलाह वाले हैं। इस सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट होता है तो रंग बिरंगी बोलियां शुरू हो जाती हैं, रंग बिरंगी जबानें खुल जाती हैं, लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह के दीन के ऊपर कलाम करना शुरू कर देते हैं और बास तो मुसलमानों वाले नाम रखकर और मुसलमान कहलाते हुए ये बात करते हैं। लेकिन अफसोस कि उनको इतना नहीं पता कि खुदा ने तो फरमा दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। खुदा ने दीन को कामिल बनाया और उस कामिल दीन के बारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलु फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, सिर्फ कलिमा पढ़ने की हद तक इस्लाम में दाखिल ना हो, सिर्फ अपना नाम मुसलमानों वाला रखने की हद तक इस्लाम में दाखिल ना हो, या शादी हो तो निकाह इस्लामी तरीके से होगा, मर गया तो जनाजा इस्लामी तरीके से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इतने मुसलमान ना हो, ये भी होना ये भी लाजिम, लेकिन फरमाया काफ़तन पूरे के पूरे, सर से पांव तक, महद से लहद तक, पैदाइश से मौत तक, जिंदगी के जुमला शोबों में और जुमला उमूर के अंदर शरीयत की, इस्लाम की, दीन की पैरवी करनी है, खुदा की इताअत करनी है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, नजात इसी में है, फला इसी में है, इससे हटकर कोई रास्ता नजात और फला का نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں.
شاہزیب بھائی نے سوال کیا ہے, پوچھ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا قرآنی ثبوت عطا فرمائے.
غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اتنا مطلق ثبوت اگر مانگا جائے گا تو وہ تو خیر دن رات 24 گھنٹے جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہی ہیں. اولاد اپنے ماں باپ سے مدد مانگتی ہے, دوست اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے, تو دوست بھی غیر اللہ ہی ہوتا ہے, ماں باپ بھی غیر اللہ ہی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا خود قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی تھی, اپنے جو صحابہ تھے ان سے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی, اور خود بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کرنے کا فرمایا, یعنی اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا. اسی طرح خود قرآن و حدیث کے اندر اور دلائل دیکھیں گے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہیں کہ آپ اندھوں کو بینا کرتے تھے, کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے, تو یہ سب کیا تھا؟ یہ مدد کرنے کی صورتیں تھیں. اندھے آتے تھے, آ کے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہماری آنکھیں ٹھیک کر دے. کوڑی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے, اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرے, ہماری مشکل اور یہ مرض دور کر دے. مردے آپ نے زندہ کر دیے لوگوں کی درخواست کے اوپر, بیماروں کو آپ نے شفا یاب کر دیا. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ ذرا بارش کے لیے کچھ دعا کر دیجیے, تو نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے. اسی طرح کتنے صحابہ کرام کہ جنہوں نے بہت سے مواقع میں, پانی ختم ہو گیا صلح حدیبیہ میں تو مدد مانگنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے, کئی مواقع پہ کھانا کم پڑ گیا تو کھانے میں اضافے کے لیے اور کھانے کے حصول کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آشوب کی بیماری تھی, سرکار کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے شفا پائی. اور اس کے علاوہ واقعات اگر آپ دیکھیں گے, اور بہت سارے واقعات ہمیں معلوم ہی ہے, پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو یہ سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اور غیر اللہ کی مدد کرنے ہی کے واقعات ہیں. میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے مدد کی, فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے مدد کی. فرشتے نازل ہوئے قرآن پاک میں اور فرشتوں نے مدد کی یہ بھی قرآن پاک میں, لیکن اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, کہ تمہاری مدد بدر کے اندر اللہ نے کی. حالانکہ اترے فرشتے تھے, مدد فرشتوں نے کی تھی, لیکن خدا نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی. تو بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی طرف سے تو کی نہیں تھی, فرشتوں کی اپنی تو طاقت نہیں ہے, خدا نے طاقت دی, خدا نے مدد کرنے کی استطاعت دی اور اس کے مطابق مدد کی, تو وہ خدا ہی کی مدد ہے. ایسے ہی جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے, جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے, تو چونکہ اس مدد کی طاقت دینے والا خدا ہے, اس مدد کی طاقت عطا کرنے والا خدا ہے, تو وہ خدا ہی کی مدد ہوتی ہے. تو لہذا فرشتے مدد کریں یا نبی مدد کریں یا ولی مدد کریں یا انسان ہی ایک دوسرے کی مدد کریں, ان سب کے پیچھے اصل خدا ہی کی مدد ہوتی ہے.
فجر کی قضا نماز اگر ہو گئی ہے تو اسے ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے یا ظہر کے بعد پڑھیں؟
فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی یعنی کہ فرض چھوٹ گئے تو اس کی قضا کب کرنی ہے؟ تو دیکھیں یہ تو بہت بہتر ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے قضا کر لیں, کیونکہ قضا کا حکم تو یہی ہے کہ جو بھی نماز قضا ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس قضا کو پڑھ لیا جائے اور فرض سے بری الذمہ ہو جائے. ٹھیک, لیکن اس میں ایک مسئلے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے صاحب ترتیب کا مسئلہ. صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی 5 یا اس سے کم نمازیں ہی پوری زندگی میں قضا ہوئی, 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں, ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے یہ پڑھ لے, سوائے ایک تو استثنائی صورتوں کے. तो जैसे फज्र कजा हुई और ये बंदा साहिब तरतीब है कि जिंदगी में इसकी कोई नमाज छूटी नहीं, या छूटी थी तो इसने पढ़ ली थी, या छूटी हैं लेकिन वो पाँच से ज़्यादा नहीं है, पाँच से कम है, तो अब ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि फजर छूटी तो फिर ये जोहर की नमाज पढ़ने से पहले पहले ये फजर पढ़े और उसके बाद जोहर पढ़े, खा उसकी वजह से इसकी जोहर की जमात ही जाती रहे, लेकिन ये पहले फजर ही पढ़ेगा और उसके बाद जोहर पढ़ेगा। और अगर साहिब तरतीब नहीं है, साहिब तरतीब नहीं है, छः या इससे ज़्यादा नमाजें उसकी कज़ा हो चुकी हैं ज़िंदगी में, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जोहर से पहले पहले फजर पढ़े, अगली नमाज से पहले पहले पिछली नमाज पढ़े, फिर ये ज़रूरी नहीं है। हाँ ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस कज़ा से फारिग हो जाए, उसको पढ़ के फारिग हो जाए।
अहमद भाई का सवाल है, पूछ रहे हैं कि तशहुद का कुछ हिस्सा रिपीट कर ले, दो बार पढ़ ले तो क्या उससे सजदा सवाब लाजिम आएगा?
तशहुद का कुछ हिस्सा रिपीट कर ले, तो कुछ हिस्सा रिपीट करने से तो सजदा सवाब लाजिम नहीं होगा, बल्कि तशहुद अगर पूरा करके, यानी कि पूरा तशहुद पढ़ लिया अब्दुहु व रसूलु तक, अब अगर दोबारा पढ़ता है तो अब दोबारा पढ़ने की सूरत में वैसे ही उसके ऊपर कोई सजदा सवाब वगैरह नहीं आता। वजह यह है कि जब एक मरतबा तशहुद पढ़ लिया, अब इसके बाद जो कादा खीरा के अंदर जो इस मकाम का महल है वो क्या है, वो दूध का है, वो दुआ का है, तो अब अगर ये रिपीट करता है उसके बाद तो इस रिपीटेशन के अंदर कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन यह है कि तरीका बहरहाल जैसा है उसके मुताबिक ही पढ़ना चाहिए।
पगड़ी पर मकान लेना कैसे?
पगड़ी पर मकान लेना ये दुरुस्त नहीं है और इससे लाजमी तौर पे बचना ही चाहिए। इसके जो शरई मसाइल हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं, विरासत के अंदर भी मसला बनता है, ज़कात के अंदर भी मसला बनता है, और ख़ुद ये अक़द शरई भी बजाते ख़ुद जो है वो कई मफासिद के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो लिहाजा पगड़ी के ऊपर ना कोई चीज़ बेची जाए और ना कोई चीज़ ली जाए।
वुज़ू में पाँव की उंगलियों का खिलाल करना क्या ज़रूरी है?
वुज़ू में पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। वुज़ू के अंदर या फ़र्ज़ होते हैं या सुन्नतें होती हैं, वाजिब वुज़ू के अंदर कोई भी नहीं है, तो लिहाजा हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, पाँव की उंगलियों का खिलाल करना और दाढ़ी का खिलाल करना ये वुज़ू के अंदर सुन्नत है, तो लिहाजा इसको लाजिमो ज़रूरी नहीं कह सकते।
बिलाल भाई पूछ रहे हैं कि सल्लू अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या ये मुकम्मल दुरूद है?
सल्लू अलैहि व आलिहि वसल्लम ये बेसिकली सीगा बन ही रहा, क्योंकि अगर सल्लू है तो फिर बनेगा सल्लू अलैहि व आलिहि वसल्लिमू तस्लीमा, फिर ये बनेगा, सल्लू जमा का सीगा है तो सल्लिमू बनेगा, और अगर सल्लाहु यानी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो ये ठीक है, ये पूरा दुरूद पाक है, इसमें दुरूद भी है इसमें सलाम भी है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल दुरूद है।
काजी इकबाल भाई पूछ रहे हैं कि कजा नमाजों के औकात क्या है?
कजा नमाजों के औकात क्या हैं? तो कज़ा नमाजों के अपने तो बजाते खुद कोई औकात नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि जो ममनू मकरू औकात हैं, तुलू आफ्ताब के बाद के 20 मिनट, गुरूब आफ्ताब से पहले के 20 मिनट और दहवा कुबरा से लेकर निसफ़ नहार हकीकी के जो दरमियान का वक्त बनता है दोपहर का, जिसे हमारे उर्फ में आमतौर पर जवाल का वक्त कहते हैं, तो ये औकात जो है ना ये वो हैं कि जिनके अंदर कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसके अलावा जो बाकी औकात है उसके अंदर कजा पढ़ सकते हैं, कोई मखसूस ऐसी सूरत बन जाए कि जिसमें खारिज की वजह से कोई ममानत आए तो ये एक और चीज़ है, कि जैसे जुम्मे के खुतबे के लिए इमाम खड़ा हो गया तो अब उस वक्त हर तरह की नमाज मना हो जाती है, फिर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अब उस वक्त कोई कजा पड़ेगा तो ये उसके लिए मना होगा, उस वक्त कजा नहीं पढ़ सकते।
एक भाई है वो पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब आपकी पसंदीदा तफ़सीर कौन सी?
पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे सिरातुल जिनान ही सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो इस वजह से नहीं कि वो मैंने ही लिखी है तो इससे कता नज़र, इस वजह से कि जो तफसीर के अंदर सबसे बुनियादी मकसद है, नुज़ूल कुरान का मकसद है, वो है हिदायत, नसीहत, मौइज़त, ज़िक्रा, तज़कीर, यानी कि नसीहत करना, याद दहानी कराना, रहनुमाई करना, हिदायत देना, तालीम देना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताना, ये कुरान मजीद की नुजूल के बुनियादी मकासद हैं। कुरान पाक को लज़िकरा कहा फरमाया गया, तज़किरतन फरमाया गया, और इसे जो है वो मौइज़तुन फरमाया गया, इसे शिफाउन फरमाया गया, इसे हुदन फरमाया गया। ये कुरान के औसाफ हैं। और सिरातुल जिलान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इल्तिज़ाम इसी बात का था कि इस असल मकसूद को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रख के ज़्यादा वजाहत और ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया जाए। तो इस अपनी खूबी की वजह से सिरातुल जिनान ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अरबी तफसीरों के अंदर तो बहरहाल बहुत सारी तफसीरें हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं अर्ज़ करूँ तो तफसीर कुर्तुबी ये मुझे ज़्यादा पसंद है। उनका उसलूब बहुत अच्छा है और बड़ी तौज़ी के साथ और बड़े दलाइल के अंदाज़ में, और तकसीम बंदी उनकी बड़ी अच्छी है। तो फ़िकी अहकाम के ऊपर बड़ा मुफस्सल कलाम है, अहादीस तय्यबा की रोशनी के अंदर बहुत अच्छा कलाम करते हैं, तो इस एतबार से वो बहुत पसंद है।
इसी से मुताल्लिक एक सवाल इस्माइल बहन ने पूछा है, पूछने के क्या तफसीर को बगैर उर्दू छू सकते हैं?
देखिए, तफसीर की किताबें ना दो तरह की होती हैं। एक तो वो है कि जिसे असल तफसीर की किताब कहा जाए, जैसे सिरातुल जिनान, या जैसे तफसीरुल हसनात, या तफसीर नईमी, या मैंने तफसीर कुर्तुबी का नाम लिया, तो उस जिल्द को अगर हम पकड़ें तो कहा जाएगा कि तफसीर की किताब को छुआ। एक ही होता है कि असल कुरान होता है और हाशिया उसके ज़िम्न में लिखा जाता है, जैसे खज़ाइनुल इरफान, नूरुल इरफान, ये जो मुख्तसर हवाशी हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा के, या सदरुल फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये जो हवाशी हैं इसको जब हम पकड़ते हैं तो अगरचे ये तफसीर को ही हम उठाते हैं, लेकिन उसको ये कहा जाता है कुरान मजीद। तो कुरान उसको कहा जा रहा है और ज़िमन के अंदर छोटे छोटे हवाशी हैं, तो इसे तो छूने का हुक्म भी ऐनी ही कुरान पाक को छूने का है, और कुरान पाक को बेवजू छूना नाजायज़ गुनाह है। दूसरा है कि तफसीर कहा जाए, जैसे सिरातुल जिनान की मैंने बात की। अब इसे अगर छुआ तो बेवजू तफसीर की किताब को छूना मकरूह है, यानी बेहतर ये है, पसंदीदा ये है कि वुजू करके छुआ जाए। यह है जब तफसीर की किताब को छुआ। तफसीर के अंदर भी आयत कुरानी ही को छुआ या उसके तर्जमे को छुआ तो ये तो कुरान और कुरान ही के छूने का हुक्म हो जाएगा, लेकिन अगर आयत पे और उसके तर्जमे पर जो है वो उंगली या हाथ नहीं है, वैसे तफसीर पे हाथ है, तो उसके बारे में भी उलमा किराम ने यही लिखा है कि बेवजू तफसीर की किताब को छूना मकरूह है।
जावेद भाई पूछ रहे हैं कि किसी चीज को रख कर उसके बदले किसी को कर्ज देना कैसा है?
कोई शय अपने पास रख कर किसी दूसरे को कर्ज देना, ये वैसे तो जायज है। आईडी कार्ड रखना तो महज एक गारंटी और जमानत ही आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे कोई माली शय रख कर जो कर्ज दिया जाता है उसे अरबी के अंदर रहन रखना कहते हैं और उर्दू जबान में गिरवी रखना। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने दूसरे को कर्ज दिया और गिरवी के तौर पे अपने पास उसका सोना रख लिया, या उसका मोटरसाइकिल रख लिया, या उसकी उसका मकान जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, तो इसे गिरवी रखना, इसे जो है वो रहन रखना कहा जाता है। तो अब ये तो जायज़ है, कुरान पाक के अंदर भी इसकी इजाज़त मौजूद है, फरिहानु मकबूबा। तो रहन होगा यानी कर्ज देने की सूरत में रहन होगा जिस पर कब्जा किया जा चुका हो। तो ये रहन का तस्करा यहाँ पर भी है, अहदीस के अंदर भी है, खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी रहन रख कर कर्ज लिया था एक यहूदी से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जो ज़रा मुबारक थी, जो जंगी लिबास होता है, ज़रा मुबारक रखी थी रहन के तौर पर और उससे कर्ज लिया था। और इसके अलावा भी अहदीस तय्यबा मौजूद हैं। तो रहन का बहरहाल जो वजूद है, जो सबूत है, वो कुरान और हदीस से साबित है। अच्छा, अब यहाँ जो मसला होता है वो काबिल तवज्जो है, जिसका असल जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि ये जो मुकरिज होता है यानी कि कर्ज दहिंदा, कर्ज देने वाला, ये कर्ज देने वाला उस रहन वाली गिरवी वाली शय से नफा नहीं उठा सकता। जैसे अगर इसने सोना अपने पास बतौर गिरवी रखा हुआ जमानत के तौर पे, तो इस सोने को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, अपने पास मोटरसाइकिल इसने कर्ज रखी हुई है तो ये उस मोटरसाइकिल पे सवारी नहीं कर सकता। इसने मकान अपने पास गिरवी रखा हुआ है तो ये उस मकान में रिहाइश नहीं कर सकता। क्योंकि ये होगा नफा उठाना, और ये नफा उठाना होगा कर्ज देने की वजह से, और कर्ज पर कोई नफा उठाना ये सूद होता है। सूद इसी को कहते हैं कि कर्ज पर कोई नफा उठाया जाए, मशरूत नफा। तो ये नफा जो है ये हराम होगा, ये सूद हो जाएगा। तो लिहाजा गिरवी रखना, रहन रखना ये जायज है, लेकिन कर्ज देने वाले का उस रहन से, उस गिरवी से नफा उठाना ये हराम है, ये नाजायज।
असल मुगल भाई ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग नमाज में नवाफिल छोड़ देते हैं, तो क्या नवाफिल छोड़ना गुनाह नहीं?
नमाज में नवाफिल छोड़ देने से मुराद जैसे ये है कि जोहर के आखिरी दो नफल होते हैं और मगरिब के आखिर में दो नफल हैं, इशा के अंदर भी जो है इस तरह नफल है, तो ये नवाफिल अगर छोड़ दिए तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, एक सवाब है, ये फजीलत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी इनका पढ़ना कई नवाफिल का साबित है, और ये नवाफिल खुदा के कुर्ब का जरिया है, और नवाफिल पढ़ते पढ़ते बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है कि जहां वो खुदा का प्यारा बन जाता है, जैसे हदीस पाक में फरमाया गया। तो ये विलायत का रास्ता है, ये खुदा के कुर्ब का रास्ता है, तो लिहाजा छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई छोड़ देता है तो बहरहाल किसी भी किस्म का उस पर कोई गुनाह वगैरह नहीं है।
जावेद खान भाई ये पूछ रहे हैं कि हाफ आस्तीन वाली शर्ट में नमाज हो जाती है?
हाफ आस्तीन वाली शर्ट में नमाज पढ़ना अगर तो ऐसी है, अगर तो वो आदमी ऐसा है कि इस तरह उस वो मौजज़ीन के सामने के जाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बाद इलाकों की वजह से या बाद अफराद की अपनी शख्सियत की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनके लिए तो कराहत नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पे जो है वो बहरहाल ऐसा नहीं होता, तो हाफ आस्तीन पहनकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये मकरूह तंजीही होगी।
अगर शोहर से कुला ली थी औरत ने और एक साल गुजर गया लेकिन इज्जत नहीं की थी, अब दोबारा निकाह करने से पहले क्या इज्जत करनी पड़ेगी?
शोहर से खुला ली थी और वो खुला शरी एतबार से जो जिसको वैलिड थी, शरी एतबार से वो वैलिड थी कि शरी तकादे उसके पूरे थे और वाकई उससे तलाक हो गई, अब उसके बाद अगर साल गुजर गया तो इद्दत कोई नए सिरे से कोई जुदा गाना कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको गुजारना होता है, बल्कि तलाक के बाद एक ड्यूरेशन होता है जिसको पूरा करना होता है, उसका मुख्तलिफ जो है ना वह खवातीन के एतबार से मुख्तलिफ हुक्म होता है। अगर किसी को जो नॉर्मल सूरत है वो मैं बता देता हूँ कि जिसको अय्याम माहवारी आते हैं, महाना माहवारी आती है जैसे, तो उसके लिए तीन मरतबा अय्याम माहवारी का आकर ख़त्म हो जाना ये इद्दत की तकमील है, इद्दत पूरी होगी। अब अगर इतना पीरियड गुजर चुका तो अब नए सिरे से उसको इद्दत गुजारने की हाजत नहीं है, इसी का नाम इद्दत है। हाँ ये है कि इद्दत के अहकाम पे अगर उसने अमल नहीं किया था तो वो गुनाह होगा, वो अपनी जगह, लेकिन वो जो आगे निकाह करने के लिए इद्दत के जो अहकाम है वो बहरहाल पूरे हो चुके, आगे निकाह कर सकती हैं, लेकिन इसमें मैं वही अर्ज करूंगा कि खुला वही हो जो शरई मोतबर हो, पंचायत ने मिलकर कर दिया या किसी इदारे से जाके खुला ले लिया, तो ये खुला शरअ मोतबर नहीं होता। खुला वो होता है जिसमें औरत डिमांड करती है और शौहर उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस इवज़ पर जो है वो खुला देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये महर मुआफ़ कर दे या मुझे इतने पैसे दे, तो वो खुला शरीय एतबार से वैलिड और सही खुला।
काशिफ भाई हैं पूछ रहे हैं कि इस पुरफितन दौर में जब बच्चों को इतने खतरात लाहिक हैं तो बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए?
तरबियत के हवाले से एक बात हमेशा याद रखें कि तरबियत खुद ब खुद नहीं होती, तरबियत के लिए कलाम करना पड़ता है, तरबियत के लिए बोलना पड़ता है, तरबियत के लिए निगरानी करनी पड़ती है, तरबियत के लिए टाइम देना पड़ता है। लिहाजा औलाद की तरबियत करनी है तो औलाद को वक्त दें, औलाद पे तवज्जो दें, उनके किरदार पे तवज्जो दें, उन्हें बाहर जाने का समझाएं, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, और किस तरह जो है वो किस तरह की कोई चीज़ हो तो उससे अवॉइड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे को कहा जाता है कि बेटा तुमने बाहर किसी से चीज़ नहीं खानी, तुमने जो है ना वो तुम्हें अगर कोई चीज़ ऑफर करे तो तुमने उससे नहीं लेनी, तुम्हें ये कहे कि बेटा आओ मैं तुम्हें चीज़ दिलाता हूँ तो तुमने उसके साथ हरगिज़ नहीं जाना, खा वो तुम्हारा पड़ोसी हो या वो तुम्हारा कोई कज़न हो, तुमने उसके साथ नहीं जाना। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को तरीके से हुदूद के अंदर रहते हुए समझानी होती है, क्योंकि हम बच्चों को समझाते नहीं, इसलिए बच्चों को खुद ब खुद कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पर उसने क्या करना है, बच्चे को नहीं पता चलता, नहीं पता चलता तो लिहाजा फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो लिहाजा बच्चों पे तवज्जो दें, वक्त दें, समझाएं। कुछ चीज़ें डिफाइन करने वाली होती हैं, कुछ को दूसरे अल्फाज में जो है मानी अल्फाज के अंदर मलफूफ करके बयान किया जाता है, लेकिन बच्चों को समझाना होगा।
मोहम्मद अजहर भाई ने कई बार ये सवाल कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि सब की मौत का वक्त पहले से लिखा हुआ है।
सब की मौत का वक्त भी पहले से लिखा हुआ है और सब का सब कुछ पहले लिखा हुआ है, जो भी है हर शय लिखी हुई है। तकदीर जो है, जो लोहे महफूज है, उसमें तो हर शय लिखी हुई है ना। कुरान पाक में फरमाया कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्तर, हर छोटी और बड़ी शय लिखी हुई है। या फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कोई तर और खुश्क यानी कि कोई मामूली से मामूली चीज भी ऐसी नहीं है कि जो एक रोशन किताब में लिखी हुई नहीं है। वो रोशन किताब कौन सी है? लोहे महफूज। तो लिहाजा मौत भी लिखी है, पैदाइश भी लिखी है, शादी भी लिखी है, तलाक भी लिखी है, यानी जो जो होने वाला है वो सब लिखा हुआ है। लेकिन आगे बंदे को इख्तियारी मामलात के अंदर इख्तियार है, तो लिहाजा वो उसके मुताबिक अमल करता है।
शाहजेद भाई ये पूछ रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग बिलखसूस नौजवान ये कहते हैं कि फला आलिम सही है, फला सही नहीं है, जो उनको पसंद आता है उसे वो सही कहते हैं, उनको पसंद नहीं आता तो उसे कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। तो क्या मयार है आलिम के दुरुस्त होने का?
देखिए, आलिम के दुरुस्त होने का जो मयार है वो मुख्तलिफ जगहों के अतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ मकासिद के अतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आलिम सहीहुल अकीदा हो, उसका अकीदा सहाबाए किराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो पहले नंबर पे उसका अकीदा दुरुस्त होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, ताज़ीम करने वाला हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जुमला सहाबा से दिलो जान से मोहब्बत करने वाला हो और आपकी ताज़ीम करने वाला हो, और इसी तरह अहले बैत के साथ दिलो जान से मोहब्बत करने वाला हो, औलिया किराम को मानने वाला हो, आइमा मुज्तहिदीन को मानने वाला हो, और इसी तरह जो बुजुर्गान दीन है उनको भी मानने वाला हो। तो ये जो बंदा होगा ये पहली शर्त है आलिम के काबिल कबूल होने के लिए, ऐसा आलिम मकबूल है। इनमें से कोई एक शय भी इधर उधर हो तो आप उसको साइड में कर दें, वो खुद उससे साइड में हो जाए। कोई लड़ना झगड़ना, कोई लड़ना फंसने की तो ज़रूरत है नहीं, बस आप उसको छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें, आप अपने काम करें। तो लिहाजा पहली शर्त ये। दूसरे नंबर पर यह है कि वो आलिम हकीकतन आलिम हो, यानी उसे इल्म हो और इल्म के अंदर मोहतात हो। इल्म नहीं है वैसे आलिम मशहूर है, या आलिम है लेकिन मोहतात फिर दीन नहीं है कि दीन के मामलात के अंदर बेपरवास आदमी है, तो लिहाजा उसकी सोबत से भी दूर रहना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि वो बामल भी हो, बेअमल होगा तो उसकी सोहबत नुकसान देगी, उसके पास बैठ के अमल की दौलत नहीं मिलेगी, बेअमली की नुहसत मिलेगी। तो ये बुनियादी बुनियादी सी शर्तें। अच्छा, अब इसके अलावा मजीद कुछ चीज़ें हैं उनका आदमी थोड़ा सा पास लिहाज करे, वो ये है कि देखिए, एक होता है कि किसी के जरिए हमने अपने अकीदे की इस्लाह करनी है तो अकीदे की हद तक उससे ताल्लुक हो, इससे आगे ना हम उससे बात करें ना पूछें और ना मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें। दूसरा ये है कि किसी के पास बैठ के आप वाकईतन अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ये उसी के पास बैठे कि जो पहले खुद बदला हुआ, जिसका अपना अमल अच्छा हो, जिसके पास बैठने से आखिरत की मोहब्बत पैदा हो, दुनिया से बेरगबती पैदा हो, अमल का जज्बा पैदा हो, नमाज का शौक पैदा हो, तिलावत की तरफ तवज्जो हो, जिक्र इलाही की तौफीक मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा आलिम रब्बानी जो है उसके पास बैठना चाहिए। बाकी ये जो आजकल हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चल गया ना कि ज़ौक के ऊपर हम आलिम की तायीन करते हैं, हमारा ज़ौक अगर शदीद है तो हमें वही आलिम पसंद है कि जिसके हर वक्त जज्बात के अंदर भड़कता रहे, और जो आपको जज्बात वाला आलिम ना मिले तो हमें वो पसंद ही ना हो, या हम अगर हम बहुत ठंडे मिजाज के हैं तो हमें जज्बात वाला ना पसंद हो जाए। ये तर्ज गलत है। शरीयत दीन की खिदमत के लिए बहुत से उसलूब, बहुत से अंदाज की ज़रूरत होती है। जज्र भी जो है वो दीन की तालीम का हिस्सा है, शफकत भी दीन की तालीम का हिस्सा है, नरमी भी दीन की तालीम का हिस्सा है, मौके माल की मुनासबत से सख्ती भी दीन की तालीम का हिस्सा है, गैरत ईमानी, जोश ईमानी, वलवला ईमानी, ये भी दीन का हिस्सा है। तो लिहाजा जो अपनी हदूद में रह के इन पे अमल कर रहा है वो सारे अच्छे हैं, जबकि वो अकीदे की अकीदा उसका दुरुस्त हो। तो ये इसी तरह अच्छा तो ये एक ज़ौक के ऊपर तायीन करना ये ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे पार्टीबाजी के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि जनाब अगर हमारा ताल्लुक किसी खास से है तो लिहाजा अब उसके मद्दे मुकाबिल हर बंदे से हम तासुब वाला रवैया अख्तियार करें। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया ला असबियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर तासुब नहीं है। ये नहीं है कि मैं फलां अपनी ताल्लुक की वजह से मैं उसका साथ दूंगा खा वो हक पे हो या बातिल पे हो। अब ये तासुब जबान का हो, ये तासुब सूबे का हो, ये तासुब कौम का हो, ये तासुब रंग का हो, ये तासुब कौमियत नस्ल का हो, बरादरी का हो या कोई और हो, तासुब जो है वो जायज़ नहीं है कि आदमी तासुब की वजह से किसी का साथ दे खा वो हक पे हो या बातिल पे हो। ये नहीं, हक का साथ देना है। और हक क्या है? हक कुरान है, हदीस है, दीन है, इस्लाम है, शरीयत है, ये हक हैं, हमने इनका साथ देना है।
एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सिफारिश के जरिए जॉब हासिल करना कैसा है?
सिफारिश अगर दुरुस्त है और जो जॉब का मुस्तहिक है, नौकरी का मुस्तहिक है, उसी ने सिफारिश के जरिए जॉब हासिल की है तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कि अच्छी सिफारिश जो है वो तो अच्छी बात है, और उसमें अगर हुस्न नीयत है और किसी की मदद है तो ये जायज़ ही है। गलत सिफारिश जो है वो गलत है कि कोई ज़्यादा मुस्तहिक है, उस ज़्यादा मुस्तहिक के मुकाबले में कम मुस्तहिक की सिफारिश करके उसे नौकरी दिलवा दी जाए, ये गलत है। जैसे सरकारी इदारों के अंदर होता है कि ज़्यादा मुस्तहिक मौजूद है लेकिन किसी की चूंकि सिफारिश आ गई MNA MPA वज़ीर मुशीर की तो लिहाजा उसको नौकरी दे दी, ये गलत है। ऐसी सिफारिश करना जायज़ नहीं है। बाकी यह है कि एक बंदा कहीं जाता है, नौकरी मिल नहीं रही, अब किसी दोस्त ने, मालिक के दोस्त ने बोल दिया यार दे दो यार इसको नौकरी, क्या ऐसे तुम जनरल लड़काते रहते हो, गरीब आदमी भला हो जाएगा, जानने वाला अपना ही बच्चा है, अब यूं कहने से उसको नौकरी दे दी, तो ये जो इस तरह की प्राइवेट इंडिविजुअल नौकरियां होती हैं यहाँ जो सिफारिश करके लगवा दिया तो वो ठीक है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं।
वली की क्या पहचान है?
वली की पहचान तो हदीस मुबारक में बयान की गई है, फरमाया कि अल्लाह के वली वो हैं कि जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, कि उन्हें देख के खुदा याद आ जाए। और इसके अलावा जो वली की पहचान है वो यही है, उसका अकीदा दुरुस्त होता है, उसका अमल दुरुस्त होता है, वो मुत्तकी होता है, वो खुदा से डरने वाला होता है, वो शरीयत पे अमल करने वाला होता है, वो गुनाह से बचने वाला होता है, वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं पड़ता और वो लोगों का खैरखा होता है। तो बेसिकली वो सारी खूबियाँ और वो सारे आमाल जो दीन को मतलूब हैं, जो खुदा को मतलूब हैं, जो अल्लाह को प्यारे हैं, वो उनका आमिल होता है। तो वली की जो है वो यही चीज़ें होती हैं कि जिनके जरिए किसी वली की पहचान होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया किराम का फैज़ान अता फरमाए और हमें, हमने जो इल्म सीखा है उसे भी याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इल्म का मुझको शौक था कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा, इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।